Now, I won't tell you, this is the first time I've ever did it in any of my meetings since I've been on the field. This is a new time. Brother Baxter is gone, and Brother Bosworth in India or in Africa. Brother Baxter, I don't know where he's at. He's gone somewhere. And the rest of them's out and gone, and Billy and I are here alone. So we're just having a great time, this rice, slaying and eating. So we kind of feel like it. Maybe we can, with the help of
प्रभु की सहायता से हम इन सभाओं को स्वयं आयोजित कर सकते हैं। यही कारण है कि मैं इसे आगे बढ़ता हुआ देखकर थोड़ा सा प्रसन्न हूँ। यही कारण है मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु इसे आयोजित करने में हमारी सहायता करेगा। अब आप जानते हैं कि वहाँ मैं अपने प्रबंधक वर्ग से प्रेम करता हूँ। मेरे कुछ प्यारे भाई लोग हैं, बॉसवर्थ, बैक्स्टर, लिंडसे, मूर, ये सारे पांच हैं, बॉन वॉन ब्लूमबर्ग। ये लोग बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। परंतु इस विषय में एक बात है, जब आपके पास व्यक्तियों का समूह होता है, एक के पास कुछ होता है, दूसरे के पास कुछ और होता है, कभी कभी जो मैं स्वयं सोचता हूँ उससे भिन्न होता है। इसलिए मैं कुछ ऐसा अनुभव करता हूँ कि अब मैं स्वतंत्र हूँ। हमारे पास एक महान समय हो सकता है, अपनी अपनी आस्तीनें मोड़कर और अंदर छलांग लगाकर और खाएं। मैं आपकी आस्तीनों को मुड़वाने के विषय में सोचता हूँ और एक महान समय हो। प्रकृति मेरी पहली बाइबल थी। मैंने प्रकृति के द्वारा परमेश्वर को सीखा और मुझे मछली पकड़ना अच्छा लगता है। मुझे मछली का शिकार कितना अच्छा लगता है। और लड़कों, क्या तुम मछली पकड़ना पसंद करते हो? यदि तुम मछली पकड़ना पसंद करते हो और अपनी माता से प्रेम रखते हो तो तुम एक अच्छे लड़के बनने जा रहे हो। और यहाँ तक कि मेरा मत परिवर्तन ने भी इसे मुझसे नहीं निकाला। इसलिए एक दिन मैं पहाड़ों पर मछली पकड़ने गया हुआ था। अब ये केवल इस छोटे लड़के के लाभ के लिए है। और मैं वहाँ पहाड़ों पर मछली पकड़ रहा था और उन दूसरे बालकों के लिए भी जो यहाँ आसपास बैठे हैं। और मैं ट्राउट मछली पकड़ रहा था। और ओ, ये बढ़िया वसंत ऋतु थी। मैं ऐसे ही जाता हूँ और वहाँ अगले गड्ढे में ट्राउट मछली थी, इस प्रकार से आप जानते हैं। और प्रभु की प्रशंसा कर रहा था और एक अच्छा समय था। चिल्लाता और अपनी डोर डालता। मैं चिल्लाने में विश्वास करता हूँ। आमीन। मैं सही में चिल्लाता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि किसी चीज ने मुझे पकड़ रखा है। और वहाँ उस क्षेत्र में बहुत सारे भालू हैं, न्यू हैम्पशायर में, जहाँ मैं मछली पकड़ता हूँ। वहाँ मैं छोटा सा डेरा लगा लेता हूँ। मैंने एक छोटा पुराना सा तंबू लगा रखा था, एक छोटे से गोल तंबू में रह रहा था। और वहाँ काले भालू सबसे नटखट चीज हैं। इस प्रकार से एक बड़ी माँ भालू और बच्चों का एक जोड़ा वहाँ उसमें घुस गया और मेरे तंबू में उथल पुथल मचा दी। अब आप क्या सोचते हैं कि मुझे उस भालू के साथ क्या करना चाहिए? छोटी लड़की यहाँ पीछे लाल बालों वाली, वास्तव में क्या मुझे उसके पीछे जाना चाहिए था? क्या मुझे जाना चाहिए था? परंतु देखिए उसने क्या किया। वो माँ भालू अंदर आई, उसने मेरा तंबू फाड़ दिया और उसने हर एक वस्तु बिखेर दी और जो कुछ मेरे पास वहाँ था वो सब खा गई। और तो वो तो बहुत अच्छा कर रही थी। इस प्रकार जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो चली गई और उसने अपने अपने छोटे बच्चों को आवाज लगाई और एक छोटा बच्चा उसके साथ भाग गया और दूसरा नहीं भागा, वो केवल वहीं बैठा रहा इस प्रकार से मेरी ओर पीठ करके। और वो कुछ कर रहा था और मेरे हाथ में उस छोटी पुरानी हाथ की कुल्हाड़ी को छोड़ और कुछ नहीं था। मैं आसपास के कुछ एल्डर वृक्ष छांट रहा था। वो इतनी दूर भाग गई होगी जैसे मेरा अनुमान है। वहाँ बाहर वो टेलीफोन का खंभा और वो वहाँ बैठ गई। उसने छोटे भालू को आवाज लगाई और उसने उसका कोई ध्यान नहीं दिया, वो बस वहीं बैठा रहा। मैंने सोचा ये छोटू क्या कर रहा है। मैं थोड़ा सा पास हो गया। मैं अधिक समीप जाने से डरता था, इसलिए डरता था कि वो मेरे खरोंच मार देगी। इस तरह से मैं कोई पेड़ भी नहीं देख सका और मैं जानता हूँ कि वो भी चढ़ सकती थी, इसलिए मैं उसके अधिक समीप जाना ना चाहता था क्योंकि मुझे भालू का स्वभाव मालूम है। इसलिए मैं थोड़ा ही समीप गया और आप जानते हैं कि क्या हुआ। मुझे पैनकेक अच्छे लगते हैं। आप में से कितने पैनकेक पसंद करते हैं लड़कों? ओ, पुराने लड़के भी। मैं उनको हाथ उठाए देखता हूँ। मैं उस पर शहद डालना पसंद करता हूँ। बैप्टिस्ट होने के नाते आप जानते हैं कि हमें कौन सी चीज ठीक ठाक रखती है। आप जानते हैं वो शहद है, आप जानते हैं। इसलिए और सुनिए, मैं उस पर छिड़कता नहीं हूँ, मैं वास्तव में उन्हें डुबाता हूँ। मैं वास्तव में उस पर उंडेलता हूँ जिससे कि वो वास्तव में अच्छा और भारी हो जाए। मैं इधर उधर थोड़ा थोड़ा नहीं लगाता, मैं वास्तव में उस पर उंडेलता हूँ और उसे शहद से भर देता हूँ। और तब आप जानते हैं कि मेरे पास शहद की बाल्टी थी, शहद की आधा गैलन की बाल्टी, और भालू शहद को बहुत पसंद करते हैं। इसलिए ये छोटा बच्चा उसमें लगा हुआ था और शहद की बाल्टी पर से ढक्कन हटा दिया था और वो वहाँ इस प्रकार से बैठा हुआ था, इस प्रकार से बाल्टी को अपनी बगल में दबाए हुए था। वो नहीं जानता था कि वो इसे कैसे खाए जैसे आप करते हैं। आप देखिए, वो इसलिए अपना छोटा पंजा उसमें डुबा देता और इस प्रकार से उसे चाटता और उसे चाटता। मुझे देखने के लिए वो पीछे घूमा और उसकी छोटी छोटी आंखें आपस में उलझी हुई थी और उसका छोटा सा पेट शहद से चिकना हो रहा था जितना हो सकता था। वो बस वहाँ बैठा हुआ अपना हाथ नीचे डालता और इस प्रकार से शहद को चाटता जितना वो चाट सकता था। मैं उन पुरानी पवित्र आत्मा वाली सभाओं के विषय में सोचने लगा जब हम बाल्टी खोला करते और अपना हाथ जार में डालते और चाट लेते। आप जानते हैं कि करते रहते, बस चाटते रहते। और आप जानते हैं यदि ये एक अजीब चीज होती थी, वो छोटा भालू जितना वो खा सकता था, उसके खाने के पश्चात उसने बाल्टी नीचे रखी और वहाँ से भाग गया। आप जानते हैं क्या घटित हुआ? वो माँ भालू और दूसरा छोटा भालू उसे शहद को साफ करने के लिए चाट रहे थे। इसलिए हो सकता है हमारी भी सभाएं कुछ इस प्रकार से चलेंगी। मैं आशा करता हूँ हम दूसरों को बताते रह सकते हैं और परमेश्वर की महिमा हम पर बरसती रहे। ठीक है, मैं छोटे बालकों को देखकर प्रसन्न हूँ। मैं आप लोगों को कुछ ऐसा ही बताना चाहता हूँ और हो सकता है कल दोपहर पश्चात हमारे पास अधिक समय होगा और हम थोड़ी अधिक बातचीत कर सकते हैं। और अब हम पिता और माता से किसी विषय पर बातचीत करेंगे। हम प्रेत शास्त्र के विषय में बात करने जा रहे हैं। भजन संहिता 103 एक से तीन में हम इन पदों को पढ़ते हैं। अधिकतर सेवकगण, क्लेरिजी मैन या बाइबल पढ़ने वालों को ये वैसे ही याद है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता। मैं आपका ध्यान यहाँ दिलाना चाहता हूँ। वो सब था जो तेरे सब धर्मों को क्षमा करता है, जो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। अब क्या हम अपने सिरों को थोड़ी देर के लिए झुका सकते हैं? अब स्वर्गीय पिता, हम यहाँ होने के लिए तेरा इस दोपहर में धन्यवाद करते हैं। हम तेरा इन छोटे बालकों के लिए धन्यवाद करते हैं जो यहाँ आसपास बैठे हैं। ये आने वाले कल के पुरुष और स्त्रियाँ हैं। यदि कोई आने वाला कल है, यदि यीशु देर करता है। और अब पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि अब आप हमें आशीषित करें जैसा कि हम आपके वचन पर बातचीत करते हैं और हमारे उस शत्रु के विषय में, शैतान के। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें परमेश्वर की सामर्थ यांत्रिकी इकाई बनाकर आगे सामने रखेंगे जो उसकी भूमि में आज रात्रि प्रत्येक इंच पर उसके आमने सामने खड़े होंगे। प्रभु से दिखा दे कि उसका कोई नैतिक अधिकार नहीं है, कि मसीह ने उसे कैलवरी पर हमारे बदले में हरा दिया है। जब वो मरा और उसने प्रधान अधिकारियों को नष्ट कर दिया और शैतान की उस प्रत्येक सामर्थ को जो उसके पास थी छीन लिया। और परमेश्वर, अब हमें बुद्धि और समझ दे कि जाने और लोगों के सामने व्याख्या करें कि कैसे वे जान सकते हैं कि कैसे चंगे हों और शैतान को हराएं। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब हम कुछ मिनटों के लिए प्रेत विद्या पर बोलने जा रहे हैं। आप प्रेतों के विषय में बहुत कुछ सुनते हैं। अब कल दोपहर बाद संभव है हम इसे समाप्त कर पाएं। इस पर प्रचार करने के लिए जो भी है, मैं दो दिन चाहता था या इस पर बात करने के लिए दोपहर बाद की दो सभाएं। अब पहली चीज, प्रेत क्या होता है? आपने बहुत से लोगों को प्रेत के विषय में बातचीत करते सुनते हैं। अच्छा, अब ठीक है, प्रेत, शैतान, ये सब एक शब्द से आया है और अंग्रेजी में ये यातना देने वाला कहलाता है। वो जो यातना देता है, शैतान है, एक दुष्ट। वो कहता है, अब आज बाइबल बहुत से लोगों के लिए वो एक पुरानी पुस्तक है जो दादा और दादी पढ़ती हैं, या ऐसे ही कुछ, इससे अधिक नहीं कि इसे पुराने लोग पढ़ते हैं और आदि आदि। परंतु ये गलत है, ये प्रत्येक के लिए है। और प्रेत यातनाएं देने वाले हैं जो हमें यातना देते हैं। अब ये प्रेत होते हैं जो मनुष्य के प्राण में आते हैं और ये शैली ज्ञान में है जो कि होता है। मैं ये कहूँगा यद्यपि वो प्रेत आत्मा जो प्राण में आती है वो कुछ ऐसा है जो प्राण को यातना देती है। बहुत सी बार आप किसी व्यक्ति को देख सकते हैं जो पागलपने में हो सकता है। हो सकता है वो मत परिवर्तित व्यक्ति हो, पवित्र आत्मा से भरे हुए हो और तब भी पूरी तरह से पागल हो। समझे, ये ठीक बात है। इसका प्राण से कोई लेना देना नहीं है, ये यातना देने वाला है। देखिए, कुछ ऐसा जो उन्हें यातना देता है। अब पहले हमें ये सारे रोग मालूम करने पड़ेंगे। ये सारे रोग शैतान से आए हैं। परमेश्वर रोगों का बनाने वाला नहीं है। परमेश्वर की ओर से कोई रोग नहीं आता। कभी कभी परमेश्वर शैतान को अवसर देता है कि आपके ऊपर रोग को एक कोड़े के समान लाए ताकि आपको परमेश्वर के भवन में वापस लाए जब आपने आज्ञा का पालन नहीं किया होता है। परंतु रोग आरंभ से शैतान की ओर से आता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति ये विश्वास करेगा कि परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता ऐसी चीज का रचयिता होगा, बीमारी और मृत्यु जैसी चीज का? नहीं, वो कभी भी नहीं था, ना कभी होगा। परमेश्वर मृत्यु की अनुमति देता है, आज्ञा तोड़ने के कारण परमेश्वर मृत्यु की अनुमति देता है। जैसा कि एक लेखक ने कहा है, मृत्यु कुल मिलाकर ये कर सकती है, परमेश्वर ने इसे घोड़ा गाड़ी में जोत दिया है और ये हमें परमेश्वर की उपस्थिति में खींच कर ले जाती है एक विश्वासी को। परंतु मृत्यु शब्द का अर्थ है अलगाव। यीशु ने कहा, वो जो मेरे वचन सुनता और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन है। और उसने कहा, मैं पुनरुत्थान जीवन हूँ, वो जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी वो जीवित रहेगा, और जो कोई भी मुझ में जीवित रहता है और मुझ में विश्वास करता है वो कभी ना मरेगा। और हम एक दूसरे की देहों को अपनी उस निर्दयी कब्र के अंदर बंद कर देते हैं, परंतु वो कभी नहीं मरेगा। अब आप यदि ध्यान दें, जब उसने लाजर के विषय में कहा तो उसने कहा लाजर सोता है। चेले हम जैसे मनुष्य थे, उन्होंने कहा ओ यदि वो सोता है तो अच्छा करता है, उसका अर्थ विश्राम कर रहा है, उन्होंने यही सोचा। परंतु वो आया और उनसे उनकी भाषा में बोला, उसने कहा वो मर गया जो तुम विश्वास करते हो, परंतु कहा मैं उसे जगाने के लिए जाता हूँ। समझे, जब आप मृत्यु का अर्थ अलगाव है। अब यदि आप में से एक को चाहिए आपके परिवार का कोई मर जाए या वो कुछ भी है, यदि वो बदला हुआ है, नया जन्म पाया हुआ, तो वे मृत नहीं हैं, वे मानवता की दृष्टिकोण से मृत हैं, परंतु वे केवल हमसे अलग हो गए हैं, परंतु वे परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, वे मृत नहीं हैं, वे मर नहीं सकते, उनके लिए मरना संभव नहीं है। यीशु ने कहा, वो जो मेरा वचन सुनता है और मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है उसके पास अनंत जीवन है, और वो न्याय में नहीं आएगा परंतु मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका, इसलिए वो मर नहीं सकता। कोई भी चीज जो अमरणहार है, अनंत है, वो नष्ट नहीं हो सकती, वो अविनाश जीवन है, उसके पास ये है क्योंकि परमेश्वर ने ये उसे दिया है, और योग्यता अनुसार नहीं, ये बिना शर्त परमेश्वर उसे देता है। परमेश्वर बुलाता है, कोई भी मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं आ सकता जब तक परमेश्वर उसे ना बुलाए। यीशु ने कहा, कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता ही उसे ना बुलाए, उसे खींचे। ये ठीक बात है ना? इसलिए इस सब में परमेश्वर है। हो सकता है आने वाले कल दोपहर बाद हम इस पर थोड़ा और ध्यान करेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए इस रोग की बात को लेना चाहता हूँ ताकि आप इसे समझ सकेंगे। एक समय था जब हम अपने परदादा में अंकुरित हुए, आप ये जानते हैं, डॉक्टर ये जानते हैं, जी हाँ आप भी जानते हैं, आप बाइबल पढ़ने वाले, आप जानते हैं जीवांश जीवन आपके परदादा में आरंभ होता है कि जीवाणु बने और अपने दादा में से होते हुए तब अपने पिता में, फिर अपनी माता में, और अब आप यहाँ हैं। ये ठीक बात है, पवित्र वचन भी यही शिक्षा देता है। यदि आप चाहें तो यहाँ पर आपके लिए वचन है, मैं विश्वास इसका करता हूँ। ये कहा गया कि लेवी ने दशमांश तब दिया जब वो अब्राहम के अंदर था जो कि उसका परदादा था। ये ठीक बात है ना? इसलिए देखिए कि जीवांश वहाँ पीछे से था, परंतु आपके प्राण पृथ्वी की रचना से पहले बने थे, जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था, आत्मिक मनुष्य, न कि एक मनुष्य अपने स्वरूप में, परंतु मनुष्य अपने स्वरूप में, समझे? और उसने उन्हें नर और नारी बनाया, इससे पहले उसके पास मनुष्य पृथ्वी की मिट्टी में होता। काश हमारे पास इस दोपहर बाद अवसर होता कि हम इसमें पीछे की ओर अध्ययन में जाते। देखिए कि ये किस प्रकार परमेश्वर ने, अब ये पंक्तियों के बीच में है, जब आप देखते हैं तो ये ठीक पंक्ति में आता है, समझे? कैसे वहाँ परमेश्वर ने पीछे आरंभ में उसने वहाँ क्या किया, और कैसे वो नीचे पृथ्वी पर आया, और कैसे उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, और तब परमेश्वर पीछे घूमा और मनुष्य के स्वरूप में बन गया कि मनुष्य को छुड़ाए। अब जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया तो वो आत्मा का मनुष्य था, तब वहाँ कोई मनुष्य भूमि जोतने के लिए नहीं था, तब उसने भूमि की मिट्टी से मनुष्य की रचना की। अब ये कालक्रम वैज्ञानिक और आदि आदि, और ये लोग जो अनुसंधान करते हैं और पुरानी हड्डियाँ आदि आदि रखते हैं और विकास क्रम में विश्वास करते हैं, मैं सही प्रकार के विकास क्रम में विश्वास करता हूँ। मनुष्य स्वयं से विकसित हुआ है, परंतु सब एक कोशिका से नहीं। नहीं श्रीमान, क्योंकि एक चिड़िया जब से परमेश्वर ने उसे चिड़िया बनाया है वो चिड़िया है, एक बंदर बंदर ही था, एक मनुष्य मनुष्य ही था। ये ठीक बात है। अभी कुछ दिनों पहले मैं लूजविले में एक डॉक्टर से बातें कर रहा था। उसने कहा, क्यों रेवरेंड ब्रनम, मैं बात कर रहा था कि कैसे वे अफ्रीका निवासी, कैसे वे इतने निम्न होकर वो खाते हैं कुछ ऐसी अजीब चीजें जो आपने कभी देखी भी ना होंगी, वे कैसे खाते होंगे? ऐसी चीजें उठा लेते हैं जो कि दूषित होती हैं, उनमें कीड़े होते हैं, उन्हें झटक देते हैं, उन कीड़े आदि को उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, समझे? उन्होंने कहा कुछ भी पी लेते हैं कोई अंतर नहीं पड़ता, ये क्या है? उसने कहा परंतु रेवरेंड ब्रैनम वे लोग मनुष्य नहीं है। मैंने कहा ओ हाँ वे हैं, जी हाँ वे वास्तव में मनुष्य हैं। मैंने कहा मनुष्य जाति के समय पे चीज पशु श्रृंखला में चिंपैंजी है और आपने पिछले 4,000 वर्षों से ये यत्न किया है कि एक फुसफुसाहट उस चिंपैंजी से सुने और वो ये नहीं कर सकता। मैंने कहा क्योंकि वो सोच नहीं सकता, उसके पास कुछ नहीं है जिससे कि वो सोचे। ओ आप उसे घोड़े के समान छोटी छोटी बातें सिखा सकते हैं, घी और हो जानवर हाँकने का शब्द या चश्मा लगाना या सिगार पीना या साइकिल पर अपना संतुलन बनाना, घुड़सवारी करना या इस प्रकार की कोई चीज, परंतु घी और हो के समान एक घोड़े से करना या कुत्ते की ओर करना या कुछ इस प्रकार का। मैंने कहा वो एक पशु है, परंतु आप मुझे अफ्रीका जाने दें, वहाँ की जो सबसे जंगली जाति है और वो झाड़ी में रहने वाले छोटे मनुष्य हैं। और मैंने कहा हो सकता है उसके दादा के दादा के दादा के दादा ने कभी श्वेत मनुष्य न देखा है, न ही कुछ और, केवल एक चीज जो वो जानता है, वो ये भी नहीं जानता कि उसका उल्टा और सीधा हाथ कौन सा है, वो केवल खाना जानता है और जो कुछ उसके हाथों में आ सकता है वो वही खाता है। यदि वो मनुष्य का मांस है या कुछ भी है उसे कोई अंतर नहीं पड़ता, वो तो केवल खाता है। परंतु मुझे एक 5 वर्ष की आयु में दे दीजिए और 15 वर्षों में वो अच्छी अंग्रेजी बोलेगा और अच्छी शिक्षा लेगा। क्यों? उसके अंदर प्राण है, परमेश्वर ने उसे मानव बनाया है और उसके पास भी वैसे ही सुसमाचार सुनने का अधिकार है कम से कम एक बार, जैसा कि हम यहाँ आसपास में सारे अमेरिका में लोगों को प्रचार कर रहे हैं बार बार और बार बार और निवेदन समझाना और सब कुछ कर रहे हैं। उसे एक बार सुनने दें, उसे चिल्लाते और अल्टर की ओर जल्द ही दौड़ते हुए देखिए, समझे? जी हाँ श्रीमान। जब भाई मैं आज अफ्रीका के लिए सोचता हूँ तो मेरा हृदय यही है और वे बेचारे छोटे काले हाथ उठते हुए ये कह रहे हैं भाई ब्रैनम यीशु के विषय में एक बार और। ओ अनुग्रह, यह मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो मुझ में कुरेदता और जलता है और जैसे ही जितनी जल्द मेरे पास पर्याप्त पैसा हो जाएगा मैं वहाँ भी जाऊँगा। हर पैसा जो मुझे मिलता है मैं उससे यही करता हूँ। इस बात को परमेश्वर जानता है, केवल उसे छोड़ जो मैं खा सकता हूँ। और बहुत से लोग मुझे मेरे लिए कपड़े देते हैं और जितने कम से कम में मैं जी सकता हूँ मैं स्वयं जितना अधिक से अधिक मैं कर सकता हूँ मैं इसे मिशनरी भंडारों में डालता हूँ जो सरकार ने व्यवस्थित किए हैं। मैं उस पर आय कर भी नहीं देता हूँ। जब तक मुझे 3 या 4-5 हजार डॉलर मिलते हैं और मैं उन्हें वहाँ ले जाकर लोगों को सुसमाचार प्रचार करता हूँ जो कि मैं जानता हूँ मुझे उस दिन उत्तर देना होगा और मैं जान जाऊंगा कि मैं किस बात का उत्तर दे रहा हूँ। जब मैं किसी नगर में जाया करता हूँ जब उनके पास पर्याप्त पैसा होता है तो मैं एक बड़ी सभा करता हूँ और वे बड़े अभियान करते हैं और मैंने हजारों डॉलर रेड क्रॉस को दिए हैं और आदि आदि। उनकी आलोचना नहीं करता, परंतु सड़क पर 4,000 डॉलर की कार में आते हैं बड़े बड़े हीरे के बटनों के साथ सिगार पीते हुए, $500 प्रति सप्ताह पैसा जो बीमार लोग। नहीं श्रीमान, नहीं बिल्कुल नहीं। और इस पर जैसे ही आप नगर से बाहर जाते हैं उन्होंने कहा पवित्र शोर मचाने वाले और इस प्रकार की बहुत सी बातें और मजाक उड़ाना और धर्म को नीचा करना जिसके पक्ष में हम खड़े हैं। नहीं श्रीमान, मैं इसे स्वयं लेता हूँ और परमेश्वर के सन्मुख जैसा कि वो मेरा न्यायी है मैं इसे सुसमाचार कार्य के लिए लगाता हूँ। इसलिए मैं जानता हूँ कि उस दिन जब मुझे अपने भंडारीपन का लेखा देना होगा ये ठीक दिया गया है, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मैं ये अनुभव करता हूँ जैसे कि मैं लोगों के साथ व्यवहार करता हूँ मैं परमेश्वर के साथ व्यवहार करता हूँ। जैसा मेरा विचार भाव आपके लिए है वो विचार भाव मसीह के लिए है और आपका जो विचार भाव मेरे प्रति है वही चीज है, ये ठीक बात है, मसीह के प्रति है। अब इस प्रकार के लोगों को देखना कि कैसे ये मनुष्य जो अब अविनाशी प्राणों के साथ है जो मर नहीं सकते, नाश नहीं हो सकते, उनका कुछ नहीं हो सकता, परंतु उनके पास अनंत जीवन है जो कि परमेश्वर ने सर्वसत्ता में अपनी इच्छा से आपको दिया है। और अब तब मैं इसे थोड़ा सा ठीक कर दूं या कुछ कहूं, कोई इससे हट रहा है और कहता है भाई ब्रैनम एक कैल्विनवादी है। नहीं मैं नहीं हूं, मैं तब तक कैल्विनवादी हूं जब तक कैल्विनवादी बाइबल में है, परंतु जब कैल्विनवाद बाइबल से हट जाता है तो मैं आर्मेनियन हूं, समझे? मैं पवित्रता में विश्वास करता हूं और मैं केल्विन में भी विश्वास करता हूं, परंतु ये दोनों एक अकेला किनारा छोड़कर और इसके बिना किसी सहयोग के इस ओर चला गया और दूसरी उस ओर। यदि ये इफिसियों की पुस्तक के लिए नहीं था कि इसे वापस लाए और ठीक उस स्थान पर रखे जहां परमेश्वर ने रखा था तो हम सब कुछ गड़बड़ कर दे देंगे। परंतु उन दोनों के पास एक धार्मिक मत है, परंतु वे इस विषय पर बीच पर जाते हैं दोनों ही, ये होलीनेस और कॉल्विन वाले भी और आर्मेनियन वाले भी। अब कॉल्विनवाद वालों के पास कुछ सत्य है। मैं उस कॉल्विनवाद की शिक्षा का विश्वास करता हूँ। मैं इसका विश्वास करता हूँ सुरक्षा में। मैं विश्वास करता हूँ कि कलीसिया के पास अनंत सुरक्षा है। कोई भी बाइबल का पढ़ने वाला ये जानता है, क्योंकि परमेश्वर ने ये पहले ही कह दिया है कि वो बिना दाग या दोष के प्रकट होंगे। ये ठीक बात है। तो फिर यही होने जा रहा है। क्या ये ठीक है? कलीसिया अनंतता के लिए सुरक्षित है। अब क्या आप कलीसिया में हैं? ये आगे की बात है। यदि आप कलीसिया में हैं, तो आप कलीसिया के साथ सुरक्षित हैं। परंतु अच्छा है कि आप कलीसिया में स्थिर रहें। और कलीसिया में आप कैसे आते हैं? हाथ मिलाने के द्वारा? नहीं। अपना नाम पुस्तक में लिखवाने के द्वारा? नहीं। नहीं श्रीमान, एक ही आत्मा के द्वारा हम सब ने एक देह में बपतिस्मा लिया, और उस देह का परमेश्वर ने कलवरी पर न्याय कर दिया। वो यीशु मसीह की देह थी, और हमने एक आत्मा द्वारा उस देह में बपतिस्मा लिया है। जब तक हम मसीह की देह में हैं, हमारे पास अनंत सुरक्षा है। हमें कोई अलग नहीं कर सकता, हमें कोई नहीं छू सकता। यदि आप बाहर जाते हैं तो अपनी इच्छा से जाते हैं, परंतु निश्चित रूप से यदि आप मसीह की देह में हैं, तो जैसे निश्चित रूप से यीशु मृतकों में से जी उठा, तो आप भी उठ जाएंगे। परमेश्वर ये पहले ही कर चुका है। वो आप पाप नहीं कर सकते। ओ, आप करते हैं। मैं आपकी दृष्टि में पापी हो सकता हूँ, परंतु यदि मैं मसीह में हूँ तो परमेश्वर इसे नहीं देखता, क्योंकि उसके पापों का प्रायश्चित हो गया। उसके लहू ने मेरे पापों की क्षतिपूर्ति वहाँ कर दी है। समझे? मैं पाप नहीं कर सकता। वो जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वो पाप नहीं कर सकता, क्योंकि वो नहीं कर सकता। परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है। समझे? वो उसकी इच्छा होती है। यदि वो गलती करता है, तो निश्चय ही वो तभी उसे स्वीकारने की इच्छा रखता है। यदि वो वास्तविक मसीह है, तो वो ये करेगा। यदि वो इसे रोके रखता है, तो वो दर्शाता है आरंभ से ही उसमें कुछ नहीं है। परंतु यदि वो वास्तविक मसीह है, ठीक यहाँ आप गेहूं का दाना भूमि में बोते हैं, ये सदा गेहूं का बीज ही होगा। कटीली झाड़ियाँ उसके चारों ओर हो सकती हैं और बहुत सी बातें, परंतु वो गेहूं का दाना ही होगा जब तक वो स्थिर रहता है। ये ठीक बात है। और यदि वास्तव में परमेश्वर की आत्मा से उत्पन्न हुआ है, तो वो अंदर बाहर आगे और पीछे नहीं होता। वो सामने संसार में और यहाँ। नहीं श्रीमान, नहीं नहीं, आप एक दिन कटीली झाड़ी और दूसरे दिन गेहूं का दाना नहीं है। परमेश्वर के खेत में ये नहीं है। जी नहीं श्रीमान, यदि आप परमेश्वर के आत्मा से उत्पन्न हुए हैं, तो आप उसी समय से मसीह हैं, जब तक आप कुछ नहीं कर जाते, और तब आप परमेश्वर के साथ अविनाश ही हैं। ये ठीक बात है, यदि आप कलीसिया में हैं। अब हम मृत्यु के विषय में बात करें। अब कैसे एक व्यक्ति ऐसी दशा में, इस प्रकार की स्थिति में कभी रोगी हो सकता है? क्योंकि आपकी ये देह अभी तक छुड़ाई नहीं गई है। आपकी देह छुड़ाई नहीं गई है। इससे कोई मतलब नहीं कि आप कितने अच्छे हैं और कितने संत हैं और कितने पवित्र हैं और कितना पवित्र आत्मा है। ये केवल आपका प्राण है, और आपका प्राण अभी तक पूर्ण नहीं है। इसमें केवल अभी आशीष परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, जो कि हमारे उद्धार का बयाना है। परंतु अब यदि हमारे पास हमारे पुनरुत्थान का बयाना नहीं है, कोई दिव्य चंगाई नहीं है, तो फिर मेरे पास कोई विश्वास नहीं है, या मेरे प्रमाण के लिए कुछ नहीं है कि कोई पुनरुत्थान है। जैसे कि यदि मसीह मेरे हृदय में नहीं रहता, यदि मुझे किसी प्रकार का मनोविज्ञान, बातें जो पीछे दृष्टिगोचर होती हैं, उनका कहीं पर विश्वास करना पड़ता है, तो फिर मैं एक छोटे से विचार के भूल में हूँ। यही कारण है कि अफ्रीका में जब वे मिशनरी यहाँ आते हैं, उन हजारों निवासियों को लाते हैं, और वे पुरानी मट्टी की मूर्तों को दबाए रहते हैं और बहुत सी चीजें, क्योंकि उन्होंने बाइबल के मनोविज्ञान वाले भाग को सुना है। ये ठीक बात है। मेरा अपना बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, वे सब वहाँ गए हैं, परंतु जब उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को व्यवहारिक रूप में होते देखा, तो ये तय हो गया, तब वे जान गए कि वो परमेश्वर था। परंतु अब ये क्या है जो रोग आरंभ करता है? अब पहली बात, इससे पहले कि ये रोग बने, ये आत्मा है। बिल्कुल वैसे ही इससे पहले कि आप मनुष्य बने, आप एक आत्मा थे। अब मैं भाई विलेट्स को उदाहरण के रूप में लूंगा। भाई विलेट्स, मैं एक समय था जब आप और मैं कुछ नहीं थे, और तब पहली चीज परमेश्वर ने हमें जीवन दिया। अब हमने माना, यदि मैं आपकी देह इस दोपहर में लूं, और आप ढेर सारी कोशिकाओं से बने हैं, जो कि परमाणुओं से एक दूसरे को थामे हुए हैं, और अब यदि यीशु देर करता है, तो एक दिन ये परमाणु नष्ट हो जाएंगे। आप पीछे की ओर चलेंगे, वे वैसे ही हो जाएंगे जैसे आरंभ में थे, वापस हवा में चले जाएंगे। परंतु जब आपकी आत्मा लौटती है, वे परमाणु फिर एक साथ इस आत्मा के साथ आएंगे, और दूसरे भाई विलेट ले आते हैं, बिल्कुल इसी वाले की तरह, केवल युवा, जब वो अपनी सुंदर चरम अवस्था में थे। जब एक मनुष्य अपने 25वें वर्ष को पार करता है तो उसकी आंखों के नीचे थोड़ी झुर्रियां आ जाती हैं और कुछ सफेद बाल आ जाते हैं। ये होने जा रहा है क्योंकि मृत्यु आपके पीछे है और एक दिन वो आपको लेने जा रही है। इससे कोई मतलब नहीं कि आप कौन हैं, ये आपको लेने जा रही है, परंतु ये धीमे धीमे आप यहाँ घेरे में आ जाएंगे और परमेश्वर आपको उस घेरे में से बाहर निकाल लेगा और आपको यहाँ ये कोना मिलता है। मृत्यु आपको लगभग ले लेगी और यहाँ परंतु कुछ समय पश्चात वो आपको ले लेगी। परंतु तब मृत्यु क्या कर सकती है? ये अपनी पूरी सामर्थ लगा देती है और तब जब ये वो सब कुछ जो वो कर सकती है, जब परमेश्वर ने आपको ये जीवन दिया था और आप अपनी युवावस्था के चरम में थे, लगभग 23, जब आप पुनरुत्थान में आते हैं तब आप बिल्कुल उसी प्रकार से आएंगे जब आप 23-25 वर्ष के थे, मृत्यु के आरंभ होने से पहले। मृत्यु के पास सब कुछ करेगी जो वो कर सकती है, वो वहाँ बैठ जाती है, परंतु आप उसी प्रकार वापस आएंगे जैसे कि आप थे। अब यदि आपकी देह में की प्रत्येक कोशिका, आइए हम इसे लें, आप एक कोशिका के बाद दूसरी कोशिका, फिर और कोशिका होते हुए आए और यहाँ मंच पर आ गए। आपकी देह की प्रत्येक कोशिका के बाद आप एक छोटे से जीवांश में आए जहाँ से आरंभ हुए। इसे साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता, आपको खुर्दबीन के शीशे में से देखना होगा। मैंने खुर्दबीन में जीवन के जीवाणुओं को देखा है, ये एक धागे के समान दिखाई पड़ता है और पहली चीज ठीक रीढ़ में आरंभ होती है, ये गांठ के समान होती है। ये पहली छोटी कोशिका कोशिका के ऊपर जमा होती है। अब यदि मुझे प्रत्येक छोटी कोशिका को लेना पड़े जिससे आप सब लोग आए हैं, एक छोटी बारीक कोशिका जीवांश, जीवांश क्या है? एक जीवाणु छोटा सूक्ष्म कोशिकाओं में सबसे छोटा, ठीक है। उसके पश्चात अब मैंने आपको आपके प्रत्येक भाग से लिया है इस छोटी कोशिका तक और मैंने अभी तक आपको नहीं पाया, मैंने आपकी कोशिकाओं को केवल रखे हुए पाया। अच्छा, तो फिर अगली चीज लहू कोशिकाएं और मांस कोशिकाएं और वे जो कुछ भी हैं, वे सब यहाँ रखी हुई हैं, परंतु मैंने आपको अभी तक नहीं पाया और अब मैं एक जीवाणु में आ गया, ठीक है। अब मैं इस कोशिका को अलग करने जा रहा हूँ। अब आप कहाँ हैं? आपका जीवन, और जीवन पहली कोशिका बनाता है जो कि एक जीवाणु है, तब हर चीज उसके स्वभाव के अनुसार, कुत्ते से कुत्ता, चिड़िया से चिड़िया, मनुष्य से मनुष्य, बढ़ने वाली कोशिकाएं, कोशिका फिर कोशिका फिर कोशिका फिर कोशिका बढ़ती है, जो आप हैं एक मनुष्य, बढ़ती हुई कोशिकाएं। अब ये परमेश्वर द्वारा नियुक्त हुआ था कि ऐसा हो, परंतु अब कैंसर के विषय में क्या है, आइए हम उसके विषय में थोड़ी बात करें। अब परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है और कहता है आज तुम यहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, यहाँ मेरे हाथ में कुछ नहीं है। कभी ऐसा हो सकता है कि मेरे हाथ में कैंसर हो। अच्छा, तो कैसे ये कैंसर वहाँ आ गया? चलिए देखें वो कैंसर क्या है। अब हम इसे अलग लें, चलिए हम इसे ले लें। अब ये भी कोशिकाओं का झुंड है, क्या आप ये जानते हैं? फोड़ा, मोतियाबिंद या कोई सी भी चीजें, ये कोशिकाएं हैं। इनका अपना कोई रूप नहीं होता, कुछ इनमें से फैल जाते हैं और कुछ मकड़ी के समान दिखते हैं और कुछ दिखते हैं, रेखा चली जाती है, एक लाल कैंसर, लाल लंबे धागे के समान जो सीधा चलता है, और तब एक गुलाबी कैंसर जो कि अधिकतर महिलाओं के स्तन पर होता है, ये पैनकेक के समान एक दूसरे पर रखा होता है, तब वे फैलते जाते हैं और वे कहीं भी उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी फोड़े, ट्यूमर असंतुलित अवस्था में होते हैं, इस प्रकार तिरछे और हर तरह उनका कोई रूप नहीं होता, क्योंकि वे एक आत्मा से हैं जिसका कोई रूप नहीं होता, परंतु ये बढ़ने वाली कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाओं का झुंड होता है। मान लीजिए अब आपकी सीधी और फोड़ा या कैंसर है, ये बढ़ने वाली कोशिकाएं हैं जो बढ़ती हैं, बढ़ती हैं, बढ़ती हैं, ये आपके जीवन को आप में से खा रही हैं, चूस रही हैं, ये लहू के बहाव पर जीवित हैं। मोतियाबिंद आंख का श्लेषम लेता है और उसी पर बढ़ता है और स्वयं से ढांक लेता है और आपकी आंख को बंद कर देता है। उनमें से कुछ आते हैं और कभी नहीं लेते, जैसे तपेदिक, ये एक छोटा सूक्ष्म जीवाणु के समान अंदर आती है, इसका आकार से कोई संबंध नहीं है, उसी आकार का जीवाणु हाथी को बनाता है, चिकारे को बनाता है, समझे, जीवाणु के आकार से कोई संबंध नहीं है। उनमें से कुछ देह का रूप लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, और कुछ कोशिकाओं में कभी नहीं जाते, कुछ आत्मा हो जाते हैं और प्राण को यातना देते हैं। हम उस भाग को लेने का यत्न करेंगे, मैं वो भाग कल दोपहर बाद के लिए छोड़ दूंगा यदि मैं ले सका, कि वो प्राण आत्मा कहाँ से आती है और कैसे यहाँ है। और अब मित्रों, मैं ये किसी प्रकार के मनोविज्ञान से नहीं बता रहा हूँ, मैंने वर्षों से प्रेत आत्माओं के साथ व्यवहार किया है और आप ये जानते हैं। यदि आप ये बात जानते हैं कि कभी कभी रात्रि में सभा समाप्त होने के पश्चात क्या होता है, आप नहीं जानते। याद रखिए, जब आप किसी आत्मा के विरुद्ध खड़े होते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस विषय में बात कर रहे हैं। वहाँ केवल खड़े होकर बस कुछ करते ही न रहिए, क्योंकि इससे कोई लाभ ना होगा। परंतु जब वास्तव में प्रेत आत्मा को आपको आज्ञा का पालन कराना होता है तो वो इसे पहचानता है। ये वो नहीं है कि आप कितनी जोर से चिल्लाते हैं, इससे कुछ नहीं होता कि कितना तेल आप उंडेलते हैं। ये वो है कि पीछे क्या है जिससे कि वो पहचानेगा सत्य। यीशु ने उससे कहा, बाहर निकला। ध्यान करिए, चेले हाथ पैर चला रहे थे और जोर लगा रहे थे और उसे बाहर निकालने का यत्न कर रहे थे और आदि आदि। उन्होंने कहा, हम क्यों ना इसे बाहर निकाल सके। कहा, तुम्हारे अपने विश्वास के कारण। कहा, उसमें से बाहर निकला, लड़का गिर पड़ा और ऐसा भयंकर दौड़ा पड़ा जैसा कभी नहीं पड़ा। समझे, वे अधिकार को पहचानते हैं। वहाँ उन आवारा लड़कों को देखिए जिन्होंने पौलुस को प्रेत आत्मा को निकालते देखा था। उन्होंने कहा, हम भी ये कार्य कर सकते हैं, किसी याजक के पुत्र थे। इसलिए वे गए और बोले, हम प्रेत आत्मा को निकाल सकते हैं। प्रेतों के काम 19वां अध्याय। वे एक मनुष्य के पास गए जिसे मिर्गी का दौरा पड़ता था और कहा, हम यीशु के नाम में शपथ धरा कर तुझसे कहते हैं, उसमें से निकला। प्रेत आत्मा ने कहा, अब यीशु के नाम में जिसका पौलुस प्रचार करता है। प्रेत आत्मा ने कहा, मैं यीशु को जानती हूँ और पौलुस को जानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? आप जानते हैं क्या घटित हुआ। उस मनुष्य पर टूट पड़ी और उनके कपड़े फाड़ दिए और उन्हें दौरे पड़ने लगे और वे सड़क पर भाग गए। वे ही प्रेत आत्माएं आज रहती हैं। इसलिए बहुत से धार्मिक उन्माद हैं। आज सांझ ये कलीसिया, आज राष्ट्र में बहुत से धार्मिक उन्माद हैं जो दिव्य चंगाई करने वालों को कहते हैं, इन्हें बंद कर देना चाहिए। ये वास्तव में बदनामी के कारण हैं। इसलिए आपको ऐसा कठिन संघर्ष करना पड़ता है। आज बहुत सी बातें हैं जो धर्म कहलाती हैं, इन्हें बंद कर देना चाहिए। कुछ नहीं, आराधनाएं हैं। यही है जो परमेश्वर की सच्ची कलीसिया से कठिन संघर्ष करवाता है। परंतु हम अमेरिकन हैं, देखा, ये इसी प्रकार होना है। परमेश्वर कहता है, गेहूं और बेलें और झाड़ियां एक साथ उगती हैं, उन्हें उखाड़ने का प्रयत्न न करो, उन्हें एक साथ बढ़ने दो, परंतु उनके फलों से आप उन्हें पहचान लेंगे। वहाँ कोई फल नहीं है, क्यों? वहाँ कोई जीवन नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। अब इस कोशिका पर ध्यान दीजिए। उदाहरण के तौर पर लें, जैसा कि बहुत सी बार लाल कैंसर अक्सर महिला के गर्भाशय पर आक्रमण करता है, महिलाओं को आघात पहुंचाता है और आदि आदि। अब ये हम इसे लें, वो वहाँ पर उसकी कोशिकाओं में है, ये कैंसर। अब एक कैंसर हर शारीरिक चीज आत्मिक का प्रतीक है। क्या आप ये जानते हैं कि हर शारीरिक चीज बगैर सोचे आत्मिक का प्रतीक है? उदाहरण के लिए, इस प्रकार जब हम यीशु की देह में जन्म लेते हैं तो हमारे जन्म के लिए तीन तत्व होते हैं, और ये तीन तत्व जब वो मरा तो मसीह के जीवन से बाहर आते हैं। उसकी देह में से पानी, लोहू, आत्मा निकले। क्या ये ठीक है? तीन तत्व, इन्हीं तीन तत्वों में से होते हुए हमारा नया जन्म होता है, न्यायोचित, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। अब ये सब एक साथ कार्यवंत हो सकते हैं, परंतु इसमें लगता है आप बिना पवित्रीकरण के न्यायोचित अवस्था में हो सकते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं और तब भी आप अपनी गंदगी अपने साथ लिए रहते हैं, परंतु आप पूर्णतः न्यायोचित और स्वच्छ पवित्र जीवन में एक समय जीवित रह सकते हैं और बगैर पवित्र आत्मा के हों। बाइबल देखिए, पहला योना 5:7 में कहा है, तीन हैं जो वहाँ स्वर्ग में गवाही देते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और पिता वचन और पवित्र आत्मा जो कि पुत्र था, और ये तीन एक हैं। और यहाँ पृथ्वी पर तीन हैं जो गवाही देते हैं, पानी, लहू और पवित्र आत्मा, और ये एक में सहमत हैं, एक नहीं परंतु एक में सहमत हैं। बिना पुत्र के आप पिता को नहीं ले सकते, बिना पवित्र आत्मा के आप पुत्र को नहीं ले सकते, क्योंकि ये अलग नहीं हो सकते हैं, एक हैं, त्रिएकता एक में है। मैं यहाँ आसपास नहीं सुनता हूँ, परंतु आप इसे राष्ट्र में काफी सुनते हैं, पेंटेकोस्टल झुंडों में। एक महत्तम बात ये है, वे इस साधारण बात में गड़बड़ा गए हैं। मैंने उनके मुख्य अधिकारियों को एक साथ एकत्र करके ये बात सिद्ध कर दी थी कि वे दोनों एक ही बात पर विश्वास करते हैं। ये शैतान उनके मध्य में है। बस यदि वो महान पेंटेकोस्टल कलीसिया वो इन छोटे छोटे पुराने रीति रिवाजों को छोड़ देगी और अपने को परमेश्वर की एक आशीषित कलीसिया में इकट्ठा कर लेंगी और स्वर्ग पर उठा लिए जाना होगा। परंतु जब तक शैतान उनको तोड़े रखता है, ठीक है, ये उसके कार्य करने की विधि है, और वे पूर्णतः एक ही बात का विश्वास करते हैं। एक कहता है, ठीक है, ये इस प्रकार से है। मैंने कहा, भाई यदि ये वो है तो वो ये है, इसलिए आप यही हैं, इसलिए ये सब एक ही बात है, परंतु आप उसमें त्रिएक त्रिएकता के परमेश्वर में हैं। अब परमेश्वर अपने एकवाद में है, परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा। अब हम ये नहीं कहते हमारे ईश्वर जैसे कि मूर्ति पूजक, ये हमारा परमेश्वर, समझे, ये तीन तह परमेश्वर है। अब ध्यान दें, शैतान भी त्रिएकता में है और उसकी सामर्थ्य त्रिएकता में है। अब ध्यान दें, जब जल लोहू और आत्मा एक नए जन्म को उत्पन्न करते हैं, क्या ये ठीक है? अब ध्यान दें, यही है जो नए जन्म का प्रतिनिधित्व करता है। नए जन्म का क्या प्रतिनिधित्व है? इससे पहले कि नया जन्म हो, जब आपकी माताएं, जब एक बालक उत्पन्न होता है, पहली बात क्या होती है? पानी, अगली लहू, अगली, देखिए, ये जीवन को बनाता है, देखिए, व्यक्ति को बनाता है, पानी, लहू, आत्मा। अब हम आगे को कैंसर के लिए देखें। हमारे पास 5 मिनट बचे हैं, मेरा अनुमान है लगभग अगले 5 मिनटों में हम कैंसर को देखें। ये व्यक्ति क्या है, ये क्या दर्शाता है? ये कूड़ा हटाने वाला है, ये गिद्ध को दर्शाता है, मरी वस्तुएं खाता है, और कैंसर कुचले हुए स्थानों से आता है अधिकतर, जहां कोशिकाओं पर चोट लगी हो और वो टूट गई हो और छोटी कोशिका वहां पर पिछड़ जाती है। ओ, ये बैप्टिस्ट के लिए एक बड़ी बात है कि नहीं? ठीक है, परंतु ये पिछड़ जाती है वो कोशिका। मैं बैप्टिस्ट हूँ जो कि पिछड़ जाने में विश्वास करता हूँ। उस दिन किसी ने यहाँ अरकनसास की सभा में कहा, बोला, भाई ब्रैनम, वो नाजरीन व्यक्ति था, वो चंगा हुआ था, उसका वो नगर में अपनी बैसाखियों को कंधे पर रखे हुए जा रहा था। उसने कहा, आप जानते हैं, बोला, जब मैं पहली बार आया तो मैंने सोचा कि आपको प्रचार करते हुए सुना, मैंने सोचा कि आप नाजरीन हो। उसने कहा, तब मैंने देखा कि अधिकतर लोग पेंटेकोस्टल हैं और किसी ने मुझे बताया कि आप पेंटेकोस्टल हैं और अब आप ये कह रहे हैं कि आप बैप्टिस्ट हैं। कहा, मैं नहीं समझ पाया। मैंने कहा, ओ, ये बहुत सरल है। मैंने कहा, मैं पेंटेकोस्टल नाजरीन बैप्टिस्ट, इसलिए ये ठीक है। ठीक है, नहीं, हम मसीह में एक हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम एक बन रहे हैं, ये ठीक बात है। अब ध्यान दें, ये छोटी कोशिका जब कुचल जाती है तो पिछड़ जाती है, ये थोड़ा सा आरंभ करती है, दूसरा जीवाणु इधर उधर दौड़ता है कि अपना जीवन उसमें डाल दे, और यही वो पीप है जो छाले में आती है, यही वो छोटा सिपाही है जो आपके जीवन के लिए लड़ता है। वे वहाँ दौड़ते हैं, उस जहर पर आक्रमण करते हैं, वे शैतानी शक्तियाँ वहाँ इकट्ठी होने का प्रयत्न करती हैं और अपना जीवन देती हैं। यही है जो बनता है, वे छोटे मृत सिपाहियों का झुंड है, वो पीप जो आपके लहू में है, वो उस छाले या घाव में है, वे आपको बचाने के लिए अपना जीवन देते हैं। जब एक छोटी कोशिका वहाँ अस्वीकार कर दी जाती है और ये प्रेत आत्मा बढ़ना आरंभ कर देती है, वो कोशिकाओं को बढ़ाना आरंभ कर देती है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जैसे आपके बालक आपके घर में आरंभ होते हैं, ये अपनी देह बनाना आरंभ कर देता है, और जैसे आपने अपनी माता में किया, कोशिका के ऊपर कोशिका, कोशिका के ऊपर कोशिका, कोशिका कैसी भी, किसी भी ओर, उनके पास कोई भी आकार नहीं होता जैसे कि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार, ये केवल आत्मा से बाहर है, बस किसी और बढ़ना शुरू कर देता है और कोशिका के ऊपर कोशिका आरंभ कर देगा, कोशिका के ऊपर कोशिका। और आप पहली बात आप जानते हैं कि आप कमजोर और बीमार अनुभव करना आरंभ कर देंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको जांचेगा, हो सकता है वो इसे पा सके, यदि वो पाता है तो संभव है वो इसे काट दे, यदि वो इसे साफ तरीके से काट दे तो ठीक है, आपको मिल गया, परंतु यदि वो उसे ठीक प्रकार से ना काट सके, तब यदि ये गले में या कहीं और है जहाँ ये साफ साफ काटा ना जा सके, एक छोटा सा भाग भी वहाँ जीवित रहेगा। देखिए, क्योंकि ये आपके समान नहीं है कि आप अपना हाथ काट देंगे और ये बस हो गया या कुछ भी, या आप अलग हो गए। मेरा क्या अर्थ है, यदि आप देह का विशेष भाग काट देंगे और अपना हाथ वहाँ छोड़ देंगे तो वो क्यों कर जीवित रहेगा? परंतु देखिए, ये उस प्रकार का जीवन नहीं है जिस प्रकार का आपके पास है, ये चलने फिरने वाली शैतानी शक्ति है। और अब ध्यान दें, आप उन्हें, डॉक्टर लोग इसे कैंसर कहते हैं, परमेश्वर इसे एक शैतान कहता है। आज देखिए, उन्होंने अभी इसे पाया है, कैंसर शब्द कहाँ से आया है? ये एक ग्रीक शब्द से आया है जो चिकित्सा प्रणाली का शब्द है, जिसका अर्थ है केकड़ा, एक केकड़ा जिसे आप समुद्र के किनारे देखते हैं जिसके ढेर सारे पैर होते हैं, ये इसी प्रकार से करता है, ये बढ़ता है, फैलता है। शब्द कैंसर केकड़ा है और ये अंदर बढ़ता है और पकड़ बनाता जाता है, जैसे जैसे बढ़ता है लहू चूसता है, उस ऑक्टोपस के समान या ऐसे ही कुछ। क्यों? एक फोड़ा या ट्यूमर मोतियाबिंद और दूसरे रोग उनमें से प्रत्येक जीवाणु से आते हैं और उस जीवाणु को एक देह होना है और इससे पहले कि ये देह हो सके इसे जीवन होना है। इससे पहले कि ये उत्पन्न हो या अंकुरित हो और ढेर सारी कोशिका बनाए इसे जीवन होना है, ठीक है ना? अब ये कैंसर कहाँ से आता है, कौन है, ये कहाँ से आता है? कुछ समय पहले ये आप में नहीं था, परंतु हो सकता है अब ये आप पर हो। ये कहाँ से आया? ये दूसरा जीवन है, आपके जीवन से भिन्न है, आप में रह रहा है और ये यात्रा युक्त है, आपके जीवन का अर्थखनन कर रहा है। यही कारण है कि यीशु ने इसको एक शैतान कहा। आज वे इसे मिर्गी कहते हैं, वे मिर्गी कहते हैं। क्यों? बाइबल में इसे यीशु ने इसे एक शैतान कहा है। जब वो मनुष्य लड़के के साथ आया जो कि भूमि पर गिर पड़ा और मुंह से झाग गिराने लगा और आदि आदि, उसने कहा इस पर शैतान है और बहुत सी बार इसने इसे आग और पानी में गिराया और इन्होंने इसके नाम की शोभा बढ़ाई और इसे मिर्गी कहा, परंतु ये एक शैतान है। और यीशु ने कहा शैतान तू इस बालक में से बाहर निकला। बिल्कुल यही। अब मिर्गी अक्सर किडनी या वृक्क रोग के कारण से होती है। हो सकता है आप इसे थोड़े समय पश्चात देख सकें, समझे? मूत्र संबंधित कारण से मिर्गी होती है। अब इसमें ध्यान दें, वो कोशिका वहाँ स्थिर हो जाती है। ये एक शैतान है, वो एक जीवन बना रहा है, बड़ा और बड़ा हो रहा है। उसके पास करने के लिए एक कर्तव्य है कि आपका जीवन ले ले। शैतान ने उसे इसलिए भेजा है कि आपके दिनों में से 16 कम कर दे। अब मैं प्रत्येक डॉक्टर का आदर करता हूँ, जी हाँ श्रीमान, हर चिकित्सा विज्ञान, परमेश्वर उन्हें इस सहायता के लिए आशीष दे कि उन्होंने लोगों की सहायता की है। ये सही बात है। आज इसके बिना आप संसार में क्या करेंगे? चिकित्सा विज्ञान के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर का अपने वाहन के लिए धन्यवाद करता हूँ। यदि परमेश्वर विज्ञान को मेरा वाहन न बनाने देता तो मेरे पास चलने और घूमने का एक कठिन समय होता। बिजली, बत्तियाँ और साबुन हाथ धोने के लिए, निश्चय ही दांत मांजने के लिए, टूथपेस्ट के लिए, मैं हर अच्छी चीज के लिए उसको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हर अच्छी वस्तु परमेश्वर की ओर से आती है। परंतु मैं आपको बता दूं, किसी थोड़ी सी भी दवा ने कभी भी किसी भी रोग को चंगा नहीं किया है और कोई भी एक डॉक्टर नहीं है, यदि वो नीम हकीम ना हो तो। परंतु एक सच्चा डॉक्टर आपको बताएगा कि वो चंगा करने वाला नहीं है, वो इसका दावा नहीं करता। माय ब्रदर्स के यहाँ आप में से बहुत से, वहाँ मेरा 2-3 बार साक्षात्कार हुआ है उन रोगियों का जो वहाँ से लाइलाज आए। आप रीडर्स डाइजेस्ट में पढ़ते हैं नवंबर कांक, आप में से कितनों ने नवंबर कांक पढ़ा है? मेरे ऊपर वो लेख रीडर डाइजेस्ट में है, समझे? और उन्होंने वहाँ मुझे बुलाया, एक बालक का साक्षात्कार जिसे उन्होंने छोड़ दिया था और कहा था कि इसका कुछ नहीं हो सकता, परंतु पवित्र आत्मा मुझसे बोला और मुझे बताया कि ये कैसे किया जाएगा और ये हो गया, ठीक है। उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया और ठीक वहाँ जहाँ जिमी और वे मायो वहाँ हुआ करता था, वहाँ पर एक बड़ा सा लिखा हुआ बोर्ड था कि हम चंगा करने वाले हैं, ये दावा नहीं करते, हम केवल कहते हैं कि हम प्रकृति की सहायता करते हैं। चंगा करने वाला एक है, वो परमेश्वर है। वे संसार में सबसे बढ़िया हैं। अब हमारे यहाँ कुछ नकली डॉक्टर हैं, जी हाँ ये ठीक बात है, हमारे यहाँ कुछ नकली प्रचारक भी हैं, ठीक है, इसलिए दोनों ओर चलता है। ध्यान दें, कोई भी मनुष्य जो इस बात का दावा करता है कि चंगा करने वाला है वो गप्पी है, क्योंकि वो ये नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल ने कहा मैं तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करने वाला और तुम्हारे सारे रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं अध्ययन कर रहा था और मेरे कमरे में संसार का एक बहुत अच्छा डॉक्टर आया। मित्रों, आप पिछले जीवन को नहीं जानते कि पीछे क्या था, और इस प्रकार की बातें मैं आम जनता में नहीं बताता, लोग गुप्त रूप से आते हैं। और आप क्या नहीं सोचते कि आज भी संसार में बहुत से निकोदीमस हैं? निश्चय ही हजारों हैं। वे उस पर देखते हैं और सभा में आते हैं और टी शर्ट पहन करके बैठते हैं या कुछ इसी प्रकार का, उन बढ़िया नामों के साथ कि आप आश्चर्यचकित हो जाएं। ठीक यहाँ सभा में बैठते हैं, कुछ दिनों तक इधर उधर घूमने के पश्चात और गुप्त रूप से बुलाते हैं और किसी को साक्षात्कार के लिए भेजते हैं और आप कहते हैं भाई बहनों मैं विश्वास करता हूँ कि ये सत्य है। वे हमारी नहीं, मनुष्य हैं, निश्चय ही। और हर मनुष्य उस सामने के अंधकार के पर्दे से आगे देखने की इच्छा रखता है, उसे उसमें से एक दिन निकलना होगा। परंतु ये कैंसर और ये चीजें बिल्कुल शैतान है, देह के रूप को धारण करता है, बढ़ता जाता है, आपका जीवन लेता जाता है। अब यदि मैं डॉक्टर के समान करूं, यदि मैं इसे काट कर अलग कर सकूं और भूमि पर डाल दूं, या इस प्रकार के उदाहरण के रूप में कहें, आप इस पृथ्वी पर स्वयं एक कैंसर हैं। अब यहाँ दिव्य चंगाई है। यदि मैं डॉक्टर की विधि से आपसे पीछा छुड़ाना चाहूँ, मैं बस करता रहूँगा, आपकी देह को रगड़ूंगा या कुछ और इसी प्रकार, जब तक कि ये पृथ्वी पर से समाप्त ना हो जाए, वहाँ कुछ भी ना बचेगा। जिस प्रकार की डॉक्टर उस बड़े हुए भाग को आपसे हटाते हैं, परंतु दिव्य चंगाई के रूप में यदि आप एक कैंसर थे, मैं आपके जीवन को आप में से बाहर निकाल दूंगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। आपका जीवन आपको छोड़ देगा, परंतु आपकी देह यहाँ वैसी ही रहेगी जैसी थी। अब यही जहाँ दृष्टि और समय दिव्य चंगाई में परमेश्वर के दुष्ट शत्रु हैं। मैं नहीं जानता कि भाई बैक्सटर ने इन बातों को कभी सभा में लिया है। मैंने बैठ करके उन्हें इसकी व्याख्या की है और भाई बॉसवर्थ बार बार, परंतु यहाँ वो जो घटित हुआ, मुझे संदेह है, पता नहीं बहुत से लोग इसे समझ पाए हैं या नहीं, क्योंकि कुछ समय बाद आप पाएंगे कि लोग वापस आ रहे हैं और कह रहे हैं, भाई प्रणम, दो तीन दिन तक तो मैं चंगा रहा था, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, अब वो समाप्त हो गई है। और मैंने ये पाया और मैं सोचता हूँ ये इस कारण से है, वे सभा में ठीक से नहीं बैठते, लोग समझते नहीं। मेरे पास ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो मंच पर आए और बिल्कुल अंधे, कैंसर वाले या मोतियाबिंद उनकी आंखों पर था, और प्रार्थना के पश्चात इस बाइबल को पढ़ा और चले गए, और तीन चार दिन में वैसे ही अंधे हो गए जैसे पहले थे। क्या घटित हुआ? कोई भी जानता है, जब जीवन किसी भी देह में से निकलता है तो कुछ समय के लिए वो सुकड़ता है। क्या ये ठीक बात है? यहाँ पर यदि किसी ने कभी हिरण मारा हो या गाय या इस प्रकार की कोई भी चीज, निश्चय ही बिल्कुल ठीक है। आज रात्रि आप उसका भार कीजिए। आप मेरे शिकारी मित्रों जो यहाँ हैं, आप एक हिरण मारते हैं और उसे तराजू पर डालते हैं और लड़कों को बताओ कि उसका कितना भार है। ध्यान रखिए, प्रातः वो कई पौंड उससे हल्का हो जाएगा जितना वो पहले था। जब मनुष्य मरता है तो देखभाल करने वाला पहली चीज ये करता है कि नकली दांत या आंख निकाल देता है, जो कुछ भी उसमें है, क्योंकि ये सुकड़ता है, और इन सबको बाहर निकाल देगा, क्योंकि मानव शरीर सुकड़ता है, सारे शरीर सुकड़ते हैं। जब जीवन कोशिका से बाहर निकल जाता है, वो नीचे की ओर चलता है, सुकड़ता है, लगभग 72 घंटे तक यही होता है, और तब वो फूलना आरंभ करता है। किसी छोटे कुत्ते को यहाँ बाहर नीचे दब जाने दें और उसे सूरज में वहीं लगभग 3 दिन तक पड़ा रहने दें, और देखिए क्या घटित हुआ, वो पहले से भी कहीं अधिक बड़ा कुत्ता हो जाएगा, वो फूल जाता है। ये ठीक बात है ना? देखिए, ठीक यही चीज तब घटित होती है जब एक शैतान रोगी व्यक्ति में से निकल जाता है। पहले कुछ दिन ओ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तब कहना आरंभ करता है, मैं पहले से अधिक बीमार हो गया, मैं चंगाई खो चुका हूँ। जिस प्रकार की विश्वास ने इसे बाहर निकाला था, अविश्वास इसे फिर से वापस ले आता है। जैसे कि विश्वास इसे मारता है, अविश्वास इसका पुनरुत्थान कर देता है। यीशु ने कहा, जब अशुद्ध आत्मा एक मनुष्य से बाहर निकल जाती है तो वो सूखे स्थानों में चली जाती है, और वो साथ दूसरी बुरी आत्माओं के साथ वापस आती है, और यदि अच्छा व्यक्ति घर के द्वार पर उसकी रक्षा के लिए ना खड़ा हो तो वो सीधा अंदर आ जाएगा। और आपके घर का अच्छा व्यक्ति आपका विश्वास है, कहें दूर रहे, यही है। परंतु अब आप साधारण रूप में उस रोगी को देखिए जो चंगा हुआ है, जो उस विशेष प्रकार का आश्चर्यक्रम ना हो। दिव्य चंगाई और एक आश्चर्यक्रम दो भिन्न प्रकार की चीजें हैं। दिव्य चंगाई एक चीज है और एक आश्चर्यक्रम अलग चीज है। परंतु एक साधारण दिव्य चंगाई, जब अशुद्ध आत्मा निकल जाती है, एक कैंसर शैतान जब वो व्यक्ति को छोड़ता है, ओ, या हम कुछ और चीजें लेंगे ताकि आप भली भांति देख सकें, मैं कहूंगा ये मोतियाबिंद। क्या घटित होता है? जबकि वो व्यक्ति, यदि आप एक अंधे व्यक्ति पर ध्यान दें, मुझे नहीं मालूम कि मेरे पास यहाँ कोई था या नहीं जिसकी अब भी मोतियाबिंद वाली आंखें हों, मैं उन्हें कुछ मिनटों के लिए खड़ा करूंगा। क्यों? इसलिए ताकि सुकड़न आरंभ हो जाए। उनसे कहें कि यहाँ वापस आए और हमें गवाही दें। ओ, वे भली प्रकार से देख सकते हैं। ओ प्रभु, मैं एकदम चीजें देख सकता हूँ। जी हाँ, मैं, क्या मामला है? जीवन चला गया, मोतियाबिंद का मांस सुकड़ रहा है। देखिए, ये कुछ दिन के लिए ऐसा ही करेगा। कहते हैं, ओ मैं अच्छा हो रहा हूँ, और कुछ समय पश्चात उन्हें सिर दर्द आरंभ हो जाता है। उतना अच्छा अनुभव नहीं होता। अगली प्रातः उठते हैं, मैं फिर अपनी दृष्टि खो रहा हूँ। उनमें से कुछ ने कहा, ओ आपका बस काम चल गया, इन पवित्र शोर मचाने वालों ने बस आपका काम चला दिया है। तुम इसका विश्वास मत करो, ये शैतान का झूठ है। यदि आप ये विश्वास करते हैं तो तुम फिर से अंधे हो जाओगे। परंतु यदि तुम केवल यही कहते जाओगे, नहीं प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, तब क्या होता है? वो मांस वाला भाग इतने लंबे समय तक फूला या सूजा रहता है कि वो दृष्टि को पूरी तरह से फिर से ढांक लेता है। वो कैंसर शरीर में फूलेगा, आपको फिर दुखित और निरंतर दर्द होगा, तब आप बुरी तरह से बीमार हो जाएंगे, भयंकर बीमार। क्यों? क्योंकि वो बढ़ा हुआ मांस आपके शरीर में मरा पड़ा है। आप वापस डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कहता है, ओ ये बेकार बात है, कैंसर वहीं पर है, मैं इसे देख सकता हूँ, निश्चय ही ये वहाँ है, परंतु वो मृत है। हालेलुया। अब लहू प्रभाव को देह को शुद्ध करना है। हर बार हृदय लहू को सारे शरीर में दबाव द्वारा फेंकता है और वो उस जीवाणु प्रभाव को ले लेता है, निश्चय ही वो आपको बीमार कर देता है। क्या हो यदि आपके अंदर एक मांस का टुकड़ा कहीं पर लटका हुआ हो, या सर्प जैसा लंबा, या आपकी उंगली के समान और अंदर लटका हुआ हो और ये सड़ रहा हो, तो फिर निश्चय ही आपके लहू के प्रभाव को उसे स्वच्छ रखना होगा, जैसे कि उसमें दाव प्रभाव है। परंतु वहाँ तो मृत मांस का टुकड़ा, वो चीज वहाँ लटकी हुई है, क्योंकि उसमें से जीवन जा चुका है। परमेश्वर की सामर्थ विश्वास के द्वारा उसे बाहर निकाल देती है। वो शैतान है, उसे छोड़ना ही है, परंतु कारण लोगों को निर्देश नहीं दिया गया, वे चले गए, छोड़ दिया, और वहीं शैतान वहाँ खड़ा है कि फिर से कब्जा कर ले। जब परमेश्वर आपको कुछ भी इस मंच पर बताता है अपने आत्मा के द्वारा, जब वो प्रेरणा में होता है, तो आप उस पर शंका ना करें, या फिर आपके ऊपर भयानक चीज आ पड़ेगी। उसने ये कहा है, क्योंकि यीशु ने कहा है, उस व्यक्ति की बाद की दशा पहले से 7 गुनी खराब हो गई है। ये ठीक है ना? जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से चली जाती है, तो वो सूखे स्थानों में घूमती फिरती है और दूसरी 7 आत्माओं के साथ वापस आती है। इसलिए आप अविश्वास मत कीजिए, उसी के साथ स्थिर रहिए। आपके हृदय से ही इसका अर्थ हो, कहें, नहीं श्रीमान, मैं हिलूंगा नहीं। इससे कोई मतलब नहीं कि मैं कितना रोगी क्यों ना हो जाऊं, उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। तब पहली चीज आप जानते हैं, आप साफ हो रहे हैं, तब सब चीजें ठीक ठाक हो जाएंगी। देखिए, ये मृत हो गया है। शल्य चिकित्सा से जो भाग डॉक्टर आप में से निकालता, वो बड़ा हुआ भाग आपके अंदर बिना जीवन के पड़ा है। आप कहते हैं उसमें जीवन है, भाई ब्रैनम क्या ये मेरा जीवन ले लेगा? नहीं श्रीमान, वो जीवन आपके जीवन से अलग है। मैंने अभी आपको दर्शाया कि आप एक जीवन है और एक जीवित प्राणी बन गए, और ये एक जीवन है और एक जीवधारी हो गया, और आप परमेश्वर के हैं और ये शैतान का है। आपने देखा मेरा क्या अर्थ है? प्रेत विद्या। अब आपको देखना चाहिए कि वो चीज कैसी दिखती है, जब आप खड़े होते हैं और इसको देखते हैं। मुझे खेद है, लगभग 3:30 बज गए हैं, मुझे खेद है। देखो मित्रों, ओ इस संसार को क्या आवश्यकता है। मैं लगभग 7 वर्षों से समस्त अमेरिका में ये शिक्षा दे रहा हूँ और ये चंगाई सभाएं कर रहा हूँ। मुझे अब अच्छी प्रकार से बोध हुआ है कि बाइबल की शिक्षा को सारे राष्ट्र में आरंभ करूँ, और प्रेत विद्या पर कि किस प्रकार लोग समझ सकते हैं कि क्या करना चाहिए। और यही कारण है वे इन सभाओं में बहुत बार जाते हैं, और लोगों आदि आप नहीं समझते, वे लोग बाहर आते हैं, और बहुत सी बार, अब ध्यान करें, वो व्यक्ति जो आया और कहा कि उसके पास दिव्य चंगाई का वरदान है, दिव्य चंगाई का वरदान आप में ही था, यदि आप चंगे हो गए हैं, ये वो आप हैं। कोई भी वरदान विश्वास के द्वारा कार्यवंत होता है, और इससे कोई मतलब नहीं कि मेरे पास कितना चंगाई का वरदान है, मैं अपने पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ। परंतु आप यहाँ खड़े हो सकते हैं, और यदि आपके पास उसी प्रकार का विश्वास नहीं है, तो ये आपका कुछ भी भला नहीं करता। मैं आपके लिए घंटों और सप्ताहों और महीनों प्रार्थना करता रह सकता हूँ। ये प्रचारक दिव्य चंगाई के साथ नहीं है, ये आप हैं जिसके पास चंगाई का वरदान है, जो चंगा होने में विश्वास करता है, क्योंकि ये विश्वास के द्वारा है। विश्वास के द्वारा परमेश्वर की प्रत्येक गतिविधि विश्वास के द्वारा है। परमेश्वर के सारे हथियार विश्वास के द्वारा है। हमारे पास संसार की कोई भी स्वाभाविक वस्तु नहीं है। मसीही कलीसिया की प्रत्येक बात विश्वास कार्य है। परमेश्वर के सारे हथियारों को देखिए, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भक्ति, कृपा, नम्रता, संयम है। क्या ये ठीक है? हर चीज अलौकिक है, कुछ भी स्वाभाविक नहीं। इसलिए हम स्वाभाविक वस्तुओं को नहीं देते, क्योंकि हम अलौकिक में कार्रवाई कर रहे हैं। और केवल एक विधि है जिस पर हम निर्भर कर सकते हैं, वो विश्वास है। किस पर? जो परमेश्वर ने कहा है वो सत्य था, और हम अनदेखे को देखते हैं, और हम उन चीजों का नाम लेते हैं जो कि है नहीं, जैसे कि वे थी, जैसा अब्राहम ने किया और उसे पाया। आमीन। अब्राहम ने उन चीजों के विषय में बातें की जो नहीं थी, जैसा परमेश्वर ने किया, जैसे कि मानो वे थी। 100 वर्ष का होने पर भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर अविश्वास के द्वारा ना डगमगाया। मैं इसकी कल्पना कर सकता हूँ, क्या आप नहीं कर सकते? देखिए, एक प्रातः सारा उठी, परमेश्वर ने कहा अब्राहम, तुम्हारे पास एक बालक होने वाला है। सारा उठी, कहा तुम्हें कैसा लग रहा है सारा? ये मिली जुली भीड़ है, परंतु सुनिए, कोई अंतर नहीं लग रहा। अच्छा, परमेश्वर की महिमा हो, हम इसे पाने वाले हैं। जाओ जाकर झुंझुना और पीने और सब चीजें तैयार करो। ठीक है, दूसरा माह निकल गया। सारा, तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा है? कोई अंतर नहीं। एक वर्ष बीत गया, सारा उस समय क्या है? कोई अंतर नहीं। 10 वर्ष बीत गए, कोई अंतर नहीं। 25 वर्ष बीत गए, कोई अंतर नहीं। अब्राहम विपरीत इसके कि निर्बल हो, वो शक्तिशाली हो गया और स्थिर हो गया। जैसे जैसे समय बीता, वो ये जान गया कि ये चमत्कार से कुछ अधिक होने जा रहा है, क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। और अविश्वास में होते हुए वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा से टिका नहीं। उसने कहा, हमें मिलने वाला है। और एक प्रातः सारा का गर्भ बढ़ने लगा और छोटा इज़ाक उत्पन्न हुआ, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और उसने उन चीजों को देखा और उन चीजों को मान लिया जो नहीं थी, जैसे कि वो मानो थी। भावनाओं के द्वारा नहीं, ना ही देखने के द्वारा। आप भावनाओं के द्वारा नहीं चलते हैं या देखते हैं, ये विश्वास के द्वारा। जब परमेश्वर ने किसी चीज की घोषणा कर दी, कहा जो कुछ भी तुम मांगो, जब तुम प्रार्थना करते हो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया, तब उसे पकड़े रहो। परमेश्वर ने ऐसा कहा है, ये ऐसा ही होना है। आमीन। प्रेतो, पिता में विश्वास, पुत्र में विश्वास, पवित्र आत्मा में विश्वास, तीनों एक में है। शैतान कांप उठेंगे और पापी जाग उठेंगे, यहोवा में विश्वास कुछ भी हिलाएगा। ये ठीक बात है। ओ प्रभु, निश्चय ही ये है। परमेश्वर में विश्वास करो, उसे देखो, तुम डिगो नहीं, वहीं स्थिर रहो। परमेश्वर ने ऐसा कहा है। और प्रेत, वे क्या हैं? वे आत्मिक जीव हैं। अब डॉक्टर कहता है, तुम्हें कैंसर हो गया है, तुम्हें टीबी है, तुम्हारे मोतियाबिंद है, तुम्हारे फेफड़ों में पानी है, तुम्हें ये है। ये एक शैतान है, ये एक जीवन है, और इसके पीछे एक आत्मा है। कितने ये जानते हैं और वो कैंसर मोतियाबिंद देख सकते हैं? इसमें है, इसमें है, ये आत्मा है, इसके अंदर जीवन है। देखिए, बिना आत्मा के किसी में जीवन नहीं हो सकता, आप समझे? इसलिए उसे कार्यवंत करने के लिए कहीं ना कहीं जीवन होना ही चाहिए। यहाँ तक कि वो वृक्ष, उसमें भी जीवन है। संसार में सारा विज्ञान घास का एक तिनका नहीं बना सकता, क्या आप जानते हैं? वो कुछ ऐसा बना सकते हैं जो इसके समान दिखे, परंतु वे जीवन का सूत्र नहीं पा सकते जो कि परमेश्वर है, समझे? यीशु ने पेड़ से कहा, तू श्रापित है, तुझमें कोई फल नहीं है और तुझमें कोई फल ना लगेगा। वे वहाँ से फिर निकले। उस दिन प्रातः के लगभग 8 बज रहे थे, लगभग 11 बजे वापस निकले। जैसे कि वे दोपहर का खाना खाने जा रहे थे, तो पतरस ने कहा, उस पेड़ को देखो, वो जड़ से सूख गया। क्यों? यीशु ने उस जीवन को जो उस वृक्ष में था डांटा, और वो उसकी जड़ों में था, और वो सारा का सारा मृत हो गया। हालेलुया। वही यीशु कैंसर को जड़ों से डांट सकता है और सारी चीजें मृत हो जाएंगी। वही वृक्ष वहाँ पर उसी प्रकार खड़ा था जैसे कि 1 घंटे पहले खड़ा था, परंतु आप पाते हैं कि पत्तियाँ गिरना आरंभ हो गई थी, और तब देखिए छाल उतरने लगी और दिन प्रतिदिन मुरझाने लगा। और 1 सप्ताह से दूसरे सप्ताह और कुछ समय पश्चात वहाँ पर पेड़ का नामो निशान भी न रहा। हालेलुया। कैंसर, ट्यूमर, यानी फोड़ा, मोतियाबिंद या कोई भी चीज हो, जब यीशु बोलता है तो उसे जाना ही पड़ता है। वो प्रेत आत्मा को निकालता है और उसने कहा, मेरे नाम से वे प्रेत आत्मा निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे या नाशक वस्तु पी लें तो उन्हें हानि ना पहुंचेगी। यदि वे अपने हाथों को बीमारों पर रखते हैं तो वे चंगे हो जाएंगे। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? मुझे खेद है मैंने आपको यहाँ बैठाए रखा। आप प्रभु से प्रेम करते हैं? अब क्या घटित होने जा रहा है? यदि आप मसीह को अपना चंगा करने वाला ग्रहण करते हैं और उसे अपने हृदय में विश्वास करते हैं कि आपको कुछ हुआ, और आप विश्वास करते हैं कि आप चंगे हो गए हैं, क्या आप ये विश्वास करने वाले हैं कि आप चंगे हो गए? शैतान को अपने ऊपर कुछ भी ना लादने दें, केवल बढ़ते रहें। डॉक्टर कहता है, डॉक्टर ये कैसा दिखता है? उसने कहा, क्यों, ये तो अभी तक वही है। अपने हृदय में आप जानते हैं कि क्या हुआ है। पहली बात आप जानते हैं, कहते हैं आश्चर्य, इस चीज को क्या हुआ? तब कहते हैं, देखिए डॉक्टर, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ क्या घटित हुआ। यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है। ये ठीक बात है, यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है। ठीक है, आइए एक क्षण के लिए हम अपने सिरों को झुकाएं। भाई विलिट्स, भाई क्या आप यहाँ पर 1 मिनट के लिए आएंगे? अब हमारे स्वर्गीय पिता, हम मसीह के लहू के लिए धन्यवादित हैं, और हो सकता है प्रभु आपका दास कभी कभी इतनी देर तक बोलने में बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, परंतु मैं पौलुस के समान अनुभव करता हूँ, जिसने एक बार सारी रात प्रचार किया। एक बेचारा व्यक्ति खिड़की पर से गिर पड़ा और मर गया, और चेला अपने जीवन में परमेश्वर का वचन लिए हुए नीचे गया और अपने शरीर को लड़के के ऊपर रखा और जीवन अंदर आ गया और फिर जीवित रहा। प्रिय परमेश्वर, मैं ये अनुभव करता हूँ कि इस महान सभ्यता का सूर्य अब अस्त हो रहा है। काफी समय बीत गया है, आधा दिन बीत चुका है, सांझ की परछाइयाँ पड़ रही हैं। परमेश्वर के राज्य से महान उजियाला आ रहा है कि इस पृथ्वी पर के उस घने अंधकार में अपना स्थान ले। परमेश्वर, मैं अनुभव करता हूँ कि मैं हर दिन बूढ़ा होता जा रहा हूँ। प्रभु, मुझे जाने दें, मुझे शक्ति दें, मेरी सहायता करें कि इस महान सत्य को हर स्थान में बता सकूं। कल आने वाली दोपहर बाद हमारी सहायता करें ताकि हम और अधिक समझ सकें। और प्रिय परमेश्वर, इस दोपहर पश्चात इस छोटी सभा को आशीषित करें। आज रात्रि जब ये लोग चंगाई सभा के लिए एकत्र हों, तो होने दें कि प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक स्त्री जब एक साथ मिलकर बातें करते जाएं और कहते हों, अब यहाँ है, अब और कोई संदेह नहीं, अब हम समझते हैं कि ये कहाँ से आता है, हम जानते हैं कि ये एक शैतान है, और अब हम जानते हैं कि वो कब छोड़ता है, उसे परमेश्वर की आज्ञा पर बाहर आना है, उसे आना ही है, परमेश्वर कर चुका है, ये कहा गया है, उसे छोड़ना ही है। तब हो सकता है वे खुशी खुशी आनंद करते हुए अपनी चंगाई का दावा करते हुए वे बाहर जाएं। कोई भी चीज होने दें कि अब कोई भी उनके मार्ग में ना खड़ी हो, केवल विश्वास करते हुए जाएं। और होने दें परमेश्वर, यहाँ ये छोटी कलीसिया और ये सहयोगी कलीसियाएं इस सभा के पश्चात एक बेदारी पाएं। प्रभु, ये इन्हें पूरी प्रकार से भर दे और बहुत सी सैकड़ों प्राणों को परमेश्वर के राज्य में ले आए। पिता, इसे ग्रहण करें। होने दे कि यहाँ ये पुरुष और स्त्रियाँ जो संपूर्ण राष्ट्रों और विभिन्न स्थानों से हैं, वे इस संदेश को अपनी अपनी कलीसिया में ले जाएं। और होने दे कि एक पुराने समय की बेदारी आए, प्रभु से ग्रहण करें। अब हमारे पापों को क्षमा करें, आपके दास होने के लिए हमारी सहायता करें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मुझे आश्चर्य है, जबकि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या यहाँ इस भवन में कोई पापी है जो कहेगा, भाई ब्रणम, मुझे अपनी प्रार्थना में स्मरण रखना? क्या आप अपना हाथ उठाएंगे? क्या यहाँ कोई पापी व्यक्ति है? मैं नहीं समझता कि वहाँ महिला, परमेश्वर आपको आशीषित करे। क्या वहाँ कोई श्रीमान, आपको परमेश्वर आपको आशीषित करे, आप और आप और आप, परमेश्वर आपको आशीषित करे। मुझे आश्चर्य है यदि आप अब ये आपको देखिए, मैं सभा में पीछे की ओर जाने में विश्वास नहीं करता। जो ऐसा करते हैं, मैं उनकी आलोचना नहीं करता। मैं पीछे सभा में जाने में विश्वास नहीं करता और किसी को खींच कर लाने का यत्न नहीं करता, समझे? कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता सिवाय पिता के, जिसने उसे खींचा है, समझे? ये ठीक बात है, आप उसे वहाँ उसकी इच्छा के विरुद्ध खींचते हैं, समझे? परंतु यदि परमेश्वर आपके हृदय के द्वार पर खटखटाता है, तो आप इस संसार के महानतम अधिकार युक्त व्यक्ति हैं। आप नहीं जानते कि मैंने संसार में कितने लोगों से बातचीत की है,